हमें लगा कि रौनक के साथ जो कुछ हुआ शायद उसमें वो लड़की एंजल भी शामिल है, लेकिन आज हमें पता चला कि वो लड़की पिछले 5 सालों से अविनाश भैया से प्यार करती है। ये हमने क्या कर दिया नानी माँ, हमें इस तरह से उन दोनों के बीच में दूरियां नहीं लानी चाहिए थीं। अब आगे, हालांकि नानी माँ सिर्फ एक टक छत को देख रही थी, ना वो अपनी पलकें झपका रही थी ना इधर उधर गर्दन घुमा रही थी, लेकिन फिर भी आस्था हमेशा की तरह अपनी सारी बातें नानी माँ से शेयर कर रही थी। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि नानी माँ उसकी बात का रिस्पॉन्स देंगी या नहीं। नानी माँ से बातें करके उसका दिल हमेशा की तरह हल्का फुल्का हो जाया करता था। वहीं दूसरी ओर, वंशिका जो कपड़े चेंज करने के लिए गांव के काका काकी के घर पर गई थी, कपड़े चेंज करते हुए बार बार ध्रुव के साथ तालाब में बिताया वक्त याद कर रही थी। किस तरह से ध्रुव उसके बेहद करीब था, किस तरह से वंशिका के दिल में उसके लिए जज्बात पैदा हो रहे थे। तो वंशिका खुद को ही डांटते हुए बोली, वो ऐसा नहीं कर सकती, उसके दिल में किसी के लिए भी प्यार पैदा नहीं हो सकता है। अभी वंशिका किसी को प्यार नहीं कर सकती, अभी उसे अपना जीवन का मकसद पूरा करना है। और वैसे भी जब ध्रुव को ये पता चलेगा कि वंशिका यहाँ उसके बेस्ट फ्रेंड, जिसे वो भाइयों से भी ज्यादा मानता है, उसे मारने के लिए आई है, तो क्या ध्रुव उसे प्यार करेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसी भी कीमत पर ध्रुव उसे प्यार नहीं करेगा, बल्कि वो उससे नफरत करेगा। तब वंशिका क्या करेगी? कहीं ना कहीं वंशिका का दिमाग इस वक्त काफी ज्यादा जोरों से चल रहा था और वो खुद से ही सवाल जवाब किए जा रही थी। अभी वंशिका कमरे में थी। उस घर में दो कमरे थे, छोटा सा बरामदा सा था, एकदम छोटा सा घर बना हुआ था, लेकिन घर बड़ा प्यारा खूबसूरत था पूरे गांव में। तभी अचानक वंशिका को बाहर से काका के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वंशिका चौंक गई और जैसे ही वो बाहर गई, उसने देखा कि 5-6 लड़के वहां आए हुए थे और काका को धमकी दे रहे थे कि अगर उन्होंने घर खाली नहीं किया तो वो उन्हें उठाकर बाहर फेंक देंगे, उन्हें रातों रात वहां से गायब करवा देंगे। वंशिका चौंक गई। उसने उन लड़कों को घूरते हुए बोला, कौन हो तुम लोग? तुम सब कैसी हरकत कर रहे हो? तुम इनके साथ? तब वो लड़के जोश भरी आवाज में बोले, हम दुर्जन सिंह के आदमी हैं और ये घर ऑलरेडी दुर्जन सिंह के नाम पर है। लेकिन फिर भी इस बूढ़े आदमी ने 6 महीने की मोहलत ली थी, लेकिन अभी भी यही रह रहा है, इसलिए दुर्जन सिंह ने इसे घर खाली करने की मोहलत दी है। केवल 3 दिनों के अंदर अंदर अगर उसने घर खाली नहीं किया तो दुर्जन सिंह इसे यहां से निकालकर बाहर फेंक देंगे। अब वंशिका पूरी तरह से चौंक गई। उसने काका काकी की तरफ देखा, जो सर झुकाए खड़े हुए थे। वो सारे लड़के धमकी देकर चले गए थे। तब वंशिका सवाल पूछते हुए बोली, काका काकी, ये सब क्या है? क्या ये आपका घर नहीं है? और आपने वो दुर्जन सिंह को घर क्यों दिया? तब काका बुरी तरह से रोने लगे और लाचारी से बोले, बिटिया, हमारा 2 बीघा का खेत था और एक दिन हमारे पूरे खेत में आग लग गई। हम पूरी तरह से बर्बाद हो गए। उसी वक्त हमारी इकलौती बेटी की शादी थी। तब हमने ब्याज पर दुर्जन सिंह से पैसे लेकर बेटी की शादी की थी, इसीलिए हमने दुर्जन सिंह के पास अपनी जमीन, अपना घर गिरवी रखा था। हमने उन्हें आधे से ज्यादा कीमत भी दे दी थी, लेकिन उनके कुछ पैसे बचे हुए हैं और अगर 3 दिनों में हमने उनके पैसे नहीं दिए तो वो हमसे हमारा घर छीन लेगा। वो बहुत जालिम है, एक नंबर का जालिम है। वो हमें यहां नहीं रहने देगा, ये कहते हुए काका रोने लगे। वंशिका को उनका दुख सुनकर बड़ा ही दर्द सा महसूस हुआ और वो कुछ पल सोचते हुए बोली, आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं आपको यहां से कहीं नहीं जाने दूंगी, मैं सब ठीक कर दूंगी। ये सोचते हुए वंशिका अब वहां से बाहर निकल गई। वंशिका ने बहुत ही कम उम्र में मेहनत मजदूरी करके कम से कम 8 से 10 लाख रुपए अपने पास जमा किए हुए थे, तो इसलिए वंशिका ने डिसीशन लिया कि वो सहकारी बैंक जाकर या कहीं आसपास ATM के बारे में पता करे और पैसे निकालकर काका काकी को दे देगी और उनके घर को बचा लेगी। आखिरकार काका काकी ने एक अनजान लड़की को इस तरह से अपने घर में रखा है और अपनी बेटी के जैसा माना है, तो भला क्या वो उनकी इतनी मदद नहीं कर सकती? ये सोचते हुए वंशिका ATM की तलाश में वहां से बाहर निकल गई। क्योंकि वो गांव था, ठेठ गांव था, वहां पर आसपास कहीं भी ATM नहीं था। वंशिका ने डिसीजन लिया कि वो किसी से ATM के बारे में पूछेगी, कितनी दूर है ATM, वहां से जाकर वो पैसे निकाल कर ले आएगी। तो इसी उम्मीद के साथ वंशिका अब जैसे ही वहां से बाहर निकलने लगी तो उसके पीछे 5 से 6 लड़के, जो काका काकी को धमकाने के लिए उनके घर पर आए थे, वो लग गए थे, क्योंकि पहली नजर में ही वंशिका पर उनकी नीयत पूरी तरह से बिगड़ गई थी। वंशिका बड़ी ही खूबसूरत थी और ऐसी लड़की उनके पूरे गांव में कोई नहीं थी। गांव में पहले भी औरतों के साथ छेड़खानी वो करते हुए आए थे, लेकिन अब वंशिका को देखकर उनकी लार पूरी तरह से टपकने लगी। और जैसे ही वंशिका गांव के बाहर गई, अचानक से उन 4 से 5 लड़कों ने वंशिका को वहीं से घेर कर अगवा कर लिया था। वंशिका छटपटाती रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई। वहीं दूसरी ओर इस वक्त अरमान अच्छी तरह से चारों तरफ देख रहा था, और आज रात में अरमान ने खतरनाक प्लान भी रेडी कर लिया था। वहीं इस वक्त रश्मि नानी माँ के पास गई थी, और क्योंकि नानी माँ के इंजेक्शन का टाइम हो गया था, नानी माँ ग्लूकोज लगी हुई थी उसी में ताकत के लिए या फिर उसी में इंजेक्शन लगा रहे थे। तब आस्था बोली, रश्मि दीदी आखिरकार कब तक नानी माँ ठीक हो जाएंगी? तब रश्मि ने आस्था से बोला, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि ये केस कितने ज्यादा रेयर होते हैं, उनमें 1 दिन भी लगता है, 2 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि नानी माँ बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी, क्योंकि नानी माँ में काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। तब रश्मि की बात सुनकर आस्था के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी। वेल, अभी वो दोनों वहां पर नानी माँ के बारे में डिस्कस कर ही रहे थे, तभी आहान और ध्रुव वहां आए और बोले, आस्था भाभी, अरमान भाई कहाँ है? अब आस्था चौंक गई कि अरमान जी कहाँ हो सकते हैं, वो तो आप लोगों के साथ ही थे ना, और जब से हम तालाब से आए हैं हम उनसे नहीं मिले, क्योंकि इस वक्त दोपहर के 2 बज रहे थे। अब आस्था भी चौंक गई कि इस तरह से अरमान जी भला कहाँ जा सकते हैं, पूरे गांव का तो उन्हें रास्ता भी सही से नहीं पता है, जबकि अरमान इस वक्त दुर्जन सिंह के ठीक सामने बैठा हुआ था और दुर्जन सिंह की ओर देख रहा था। वहीं दुर्जन सिंह के 4-5 आदमियों ने वंशिका को जिन्होंने अगवा किया था, वो ठीक उसी वक्त उन्होंने दुर्जन सिंह को फोन करके बोला कि उनके हाथ एक बड़ी ही खूबसूरत शहरी चिड़िया लगी है। अब जैसे शहरी चिड़िया बोल, फोन के स्पीकर में से आई हुई आवाजों को अरमान ने भी सुन लिया था, लेकिन उसने इस तरह से रिएक्ट किया मानो कि उसने कुछ सुना ही ना हो। वहीं दुर्जन सिंह तुरंत बात बदलते हुए एरोगेंट वॉइस में बोला, ठीक है उसे अपने गोदाम पर ले जाओ, ठीक है सारा माल वहीं डलवा दो। दुर्जन सिंह जानबूझकर अरमान के सामने इस तरह से रिएक्ट कर रहा था मानो कि वो उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो, हालांकि उसे नहीं पता था कि इस वक्त कितना ज्यादा खतरनाक आदमी उसके सामने बैठा हुआ था। अरमान ने दुर्जन सिंह की ओर देखकर बिना किसी इमोशंस कहा, दुर्जन सिंह, अगर मुझे इस बात के बारे में पता चला कि नानी माँ की इस हालात के पीछे तुम्हारा हाथ है, तो मैं तुम्हारे इतने टुकड़े कर दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकोगे, तो इसीलिए मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कुछ घंटे की मोहलत देता हूँ, वक्त रहते 24 घंटे की मोहलत देता हूँ।
वक्त रहते आकर अपने गलती की माफी मांग लो, जो भी तुमने गुनाह किया है उसे कबूल कर लेना। इतना बोलकर अरमान बिना दुर्जन सिंह की कोई बात सुने वहां से निकल गया। वहीं अरमान की बात सुनकर दुर्जन सिंह को गुस्सा आ गया और उसका चेहरा लाल हो गया था, और उसने डिसीजन लिया कि सबसे पहले इस शहरी आदमी को ही खत्म कर देगा। लेकिन फिलहाल तो उसका मन एंजॉय करने का था, और अब क्योंकि उसके आदमी गोदाम पर वंशिका को ले गए थे, तो इसलिए अब दुर्जन सिंह जल्दी से एकदम परफेक्टली नहाने धोने लगा, अपने आप को परफ्यूम से नहलाया और तैयार होकर वो जल्दी ही अपने गोदाम की तरफ जाने लगा। वहीं दूसरी ओर वंशिका जोरों से चीख चिल्ला रही थी, लेकिन दुर्जन सिंह का जंगल का गोदाम एक जंगल गांव के गहरे घने जंगलों में था। वहां पर कोई भी इंसान नहीं जाया करता था। दुर्जन सिंह जब भी अपने कोई गैरकानूनी काम किया करता था, किसी औरत के साथ इस तरह की हरकत किया करता था, वो गोदाम पर ही उसे भिजवाया करता था, क्योंकि वहां पर उसके काले कारनामों को देखने वाला कोई नहीं था। वहीं दूसरी ओर अब ध्रुव आहान अरमान को ढूंढने के लिए चल दिए थे, साथ ही साथ आकाश सुमित को भी ये खबर मिल गई कि अरमान यहां नहीं है। कहीं ना कहीं जिस तरह से अरमान हंसा था, तो उन्हें तो पहले शक हो गया था कि अरमान कुछ ना कुछ बड़ा करने वाला है। तो अरमान आस्था के गांव में कुछ गड़बड़ ना करते, इसी इरादे से वो सबके सब अरमान को ढूंढने के लिए पूरे गांव में फैलने लगे थे। वहीं आस्था भी अब रौनक और राधिका को साथ में लेकर अरमान को ढूंढने लगी थी। रश्मि तो ऑलरेडी नानी माँ के पास थी और उनकी केयर कर रही थी, पर आस्था इस तरह से अकेली बाहर नहीं जा सकती थी, इसलिए रौनक और राधिका हर वक्त आस्था के साथ साथ चल रही थी, ताकि अगर आस्था को कुछ भी कितनी सी भी प्रॉब्लम हो तो वो लोग उसका ख्याल रख सकें। आस्था ने जहां उसका अड्डा था वहां से लेकर हर जगह गांव की गली गली देखना शुरू कर दिया था, और तभी आस्था पिशाच वाली गली की ठीक सामने आकर खड़ी हो गई थी। अब एक पल को उसके मन में ख्याल भी आया कि कहीं अरमान पिशाच के पास न चला गया हो। वैसे भी आस्था ने मन ही मन में सोचा कि वैसे भी अरमान सिंघानिया तो किसी पिशाच से कम नहीं है, और कहीं खुद को साबित करने के लिए वो पिशाच के पास न चला जाए। पिशाच वाली गली को देखते हुए आस्था के माथे से पसीना निकलना शुरू हो गया। आस्था को डरते हुए देखकर राधिका भी डरने लगी थी, लेकिन रौनक उन दोनों की ओर देखकर बोला, क्या हो गया तुम दोनों को? हाँ, इस तरह से क्यों डर रही हो तुम दोनों? तो इस तरह से बिहेव कर रही हो मानो कि गली में से अभी पिशाच आकर यहाँ आप लोगों पर हमला कर देगा। और वैसे भी अगर अरमान घाई पिशाच वाली गली के अंदर गए होंगे तो हमें वहां जाकर अंदर देखना चाहिए। अब रौनक ने जैसे ही ये बोला था तुरंत आस्था बोल पड़ी थी, नहीं नहीं, हम अंदर नहीं जाएंगे। तुमने देखा नहीं, उस दिन नानी माँ पर हमला हो गया था, और हम अगर अंदर गए तो मेरा क्या होगा, अपने हमारे बच्चे का क्या होगा, और हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो? नहीं नहीं, ये सारी बातें मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि अरमान जी यहाँ नहीं होंगे। वैसे भी उन्होंने हमसे वादा किया है कि वो हमें बिना बताए बिल्कुल भी पिशाच वाली गली में नहीं जाएंगे। आस्था की इतनी कॉन्फिडेंस वाली बातें सुनकर रौनक हल्का सा मुस्कुराती थी, और कहीं ना कहीं राधिका के माथे से और आस्था के माथे से पसीने को निकलते हुए देखकर वो हंस भी रही थी और सोच रही थी क्या वो कहीं सीरियसली वाकई पिशाच वगैरह भी कुछ होता है। फिलहाल आस्था ने दोनों का हाथ पकड़ लिया था और किसी और गली में आगे जाकर अरमान को ढूंढने लगी थी। वहीं दादाजी इस वक्त नानी माँ के पास बैठे हुए थे। रश्मि को उन्होंने आराम करने के लिए भेज दिया था और आस्था को उन्होंने ही अरमान को खोजने के लिए भेजा था, क्योंकि दादाजी सोच रहे थे कि अगर अरमान को गुस्सा भी आ रहा होगा और आस्था को वो अपने सामने दिखेगा तो उसका सारा गुस्सा भी शांत हो जाएगा। तो ये सोचते हुए वो लोग जल्दी ही वहां से निकल गए। वहीं प्रियंका जो बेखबर होकर सोई हुई थी, उसे किसी से कोई लेना देना नहीं था, और अबीर सिंह राठौर सिर्फ खाली खाली आंखा से सबकी ओर देख रहा था। वो कहीं ना कहीं अविनाश से बात करने का एक मौका ढूंढ रहा था, क्योंकि अबीर सिंह राठौर भले ही वहां था लेकिन उसने अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट किया था मानो कि वो वहां मौजूद ही ना हो, क्योंकि वो बिल्कुल भी खुलकर किसी के भी सामने नहीं आ सकता था। इस वक्त उसके दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा था और अपना प्लान वो हर हाल में पूरा करना चाहता था। बचपन से लेकर आज तक उसके दिल में एक आग लगी हुई थी जिसे शांत करने का मुझे मौका मिला था, और उसी के लिए वो यहाँ इतनी दूर सफर करके आस्था के गांव आया था। ऐसा लग रहा था कि उसे किसी भी चीज से, किसी भी बात से कोई मतलब नहीं था। इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये तो हमें आने वाला कल ही बताने वाला था। वेल, अब सबके जाने के बाद अबीर ने सोचा कि यही अच्छा मौका है, उसे अविनाश से बात करनी चाहिए, क्योंकि अबीर सिंह राठौर कुछ इंपॉर्टेंट बात अविनाश से करना चाहता था। लेकिन जैसे ही वो उसके कमरे के करीब गया उसने देखा कि वहां पर एंजल है। उसे वक्त अविनाश एंजल के साथ था, तो एंजल को देखकर वीर सिंह राठौर अंदर जा ही नहीं पाया था, इसीलिए वो एंजल के बाहर निकलने का इंतजार करने लगा था।